आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर विनय लाकरा से, जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट के नए प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने यह नया रोल पिछले साल मई में शुरू किया था। वे कहते हैं कि वे पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर विनय लाकरा जी से। डॉक्टर विनय, आपका SBS हिंदी प्रोग्राम में आज बहुत बहुत स्वागत है।
नताशा जी, धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और आपके श्रोताओं को नमस्कार। मैं 2004 में ऑस्ट्रेलिया आया था, और जब मैं आया था मैंने ऑस्ट्रेलिया इंडिया में साइकियाट्री ट्रेनिंग करी थी उस वक्त, और
जी
फिर यहाँ आके मैंने काम शुरू किया, और धीरे धीरे जैसे बाकी बहुत सारे लोग हैं आगे बढ़ते गए। और अभी मैं जो यहाँ पे रॉयल ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट है, जो साइकियाट्रिस्ट की मेन बॉडी है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड
जी
में, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ पिछले 1 साल से,
जी
और मेरा जो टर्म है वो अगले 1 साल और रहेगा। तो 2 साल का टर्म होता है वो प्रेसिडेंट का, तो 2000 मई 2021 में मैंने वो प्रेसिडेंट का रोल संभाला था, और वो अगले 1 साल।
तो क्या डॉक्टर विनय, आपसे पहले भी कोई भारतीय मूल के व्यक्ति इस रोल में चुने गए हैं?
तो मैं पहला भारतीय हूँ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हूँ, और पहले हमारे जो जो हमारा ये जो कॉलेज है, जो इसमें पहले लोग इंग्लैंड से ट्रेनिंग करके यहाँ आए हैं, जो बाद में यहाँ के प्रेसिडेंट भी बने होंगे, पर लेकिन जो अभी रीसेंट टाइम्स में जिसने किसी ने बाहर से ट्रेनिंग करी है और यहाँ आके फिर आगे ट्रेनिंग करके प्रेसिडेंट बना, वो आई थिंक मैं अभी रीसेंट टाइम्स में मैं ही हूँ। तो इन मतलब उस तरीके से देखा जाए तो मेरी ट्रेनिंग इंडिया में थी पहले, और फिर मैंने यहाँ आके ट्रेनिंग करी। इनका जो जो परीक्षा थी वो मैंने पास करी, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के मैं इस स्थान तक पहुंचा हूँ। तो मैं पहला भारतीय हूँ, और मैं पहला विदेशी मतलब विदेश में पहले साइकियाट्री ट्रेनिंग करके और फिर यहाँ प्रेजिडेंट होने वाला, तो शायद मैं पहला नहीं हूँ, क्योंकि इंग्लैंड से लोग आए हैं 1960 और 70 के दशक में आई थिंक, पर अभी पिछले 2 दशक में मैं शायद पहला ऐसा हूँ जो जिसने विदेश में साइकियाट्री की ट्रेनिंग करी और फिर यहाँ आके आगे ट्रेनिंग करके और मैं फिर प्रेसिडेंट बना हूँ।
तो ये भारतीय समुदाय के लिए तो एक बहुत ही गर्व की बात है, आप इस मेडिकल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं ये जानना चाहती हूँ, अक्सर प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पर जब आप माइग्रेंट कम्युनिटी से आते हैं तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और रेसिज्म को लेकर भी चर्चाएं होती हैं। तो क्या आपने इन कठिनाइयों को महसूस किया अपनी प्रोफेशनल लाइफ के दौरान?
देखिए, ऐसा है तो बड़े गर्व की बात हम सब के लिए कि मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, और दूसरा क्या है, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेरा ही योगदान नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है ना। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को सहायता दी, कुछ लोग हैं जिनको हम जैसे मेंटोर हैं, मेरे मेंटोर हैं जिन्होंने मेरे को मदद करी, और मेरे परिवार के लोग हैं, और जो मेरे काम में जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, अब जो बाकी बहुत सारे मेरे साइकियाट्रिस्ट कलीग हैं, उन सब की मदद के कारण से है ये चीजें हुई। ये सिर्फ ये कहना कि सिर्फ मैंने कर दिया और ये हो गया, ये कोई बात नहीं है। तो ये बहुत सारे लोगों का योगदान है इसमें, इस मुकाम तक पहुंचने में। और चूंकि आप शायद जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो विदेश में ट्रेनिंग करके पहले विदेश में ट्रेनिंग करते हैं फिर यहाँ आते हैं, और उसमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी हैं, GPs भी हैं, बाकी कॉलेजेस में भी हैं। तो धीरे धीरे हम लोग अपना आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम अपना स्थान बना रहे हैं यहाँ पे, जो हायर लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस तरीके से देखा जाए तो मेरा ये पोजीशन काफी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। रही बात जो कठिनाइयों की, देखिए ऐसा है कि जब आप एक दूसरे देश में ट्रेनिंग करके आते हैं तो जो जिस तरीके से काम किया जाता है वो थोड़ा सा अलग है वहां पे और यहाँ पे भी, तो थोड़ा सा तो वो सबको सीखने की जरूरत होती है, तो वो मेरे को भी सीखना पड़ा। फिर मेरे को पता लगा कि मेरे को कुछ परीक्षा पास करनी थी, तो वो फिर उसके लिए शुरू शुरू में थोड़ा सा सहायता थोड़ी कम थी, पर धीरे धीरे बाकी लोगों ने मदद करी तो वो परीक्षा मैंने पास करी। और भी थोड़ी बहुत चीजें थी, परेशानियां तो होती हैं, देखो हर तरह की परेशानियां झेलते हैं लोग, पर अगर साथ में ये भी देखा जाए कि बहुत सारे लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जिनको कहते हैं वो अवेलेबल होती हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो कठिनाइयां बहुत सारे लोग परेशानियां सहते हैं, लेकिन साथ में आई थिंक पिछले 2 दशक में काफी सुधार आ गया है इन चीजों में। जो लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम बोलते हैं, या जैसे बहुत सारे लोग रेसिज्म के बारे में बात करते हैं, है, वो उन चीजों में काफी सुधार आ गया।
डॉक्टर बने, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व कर रहे हैं वो मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत काम करती है, तो उस विषय में आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं?
पिछले 2 2.5 3 साल से हम थोड़ा बहुत काम कर ही रहे हैं। तो मैं पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट की एक पोजीशन होती है, तो जब मेरा
जी
इलेक्शन हुआ था तो क्योंकि ये इलेक्शन का प्रोसेस था हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट रहा 2 साल और उसके बाद फिर मैं प्रेसिडेंट का रोल मैंने लिया। तो जब कोविड ये महामारी शुरू हुई थी तो उस वक्त मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट था, तो हमने बहुत सारे चीजें करी। एक तो हमने काफी सरकार के साथ मिलके ये जो टेली हेल्थ का जो जो मसला है इसको इसको हल किया। तो
जी
ये जो टेली हेल्थ अभी रूटीन बन गई है, टेली तरीके से जो हम सर्विसेज ऑफर ऑफर कर रहे हैं,
जी
तो एक उसके लिए हमने एज ए कॉलेज काफी काफी काम किया। दूसरा जो हमारा जो मेन काम है एज ए ऑर्गेनाइजेशन वो है कि भाई हम साइकेट्रिस्ट को ट्रेनिंग दे सकें। तो थोड़ी बहुत मुश्किलें आई हमारे क्योंकि जब लॉकडाउन हो गए तो कुछ कुछ एग्जाम कैंसिल हुए और बड़ी दिक्कत की बात थी हमारे जो ट्रेनीज थे उनके लिए। और पर आई थिंक सबके सहयोग से हमने कुछ रास्ते निकाल के उस चीज को, उस परेशानी को हल किया। तो मुझे बड़ी खुशी है कहते हुए कि हम लोगों ने साइकेट्रिस्ट को ट्रेनिंग करने में अपने जो नंबर हमारे होने चाहिए वो वी आर बैक ऑन ट्रैक। तो वो
जी
एक मेन, और तीसरी जो मेन जो काम था वो था जो जो समाज के लिए हमें जो मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस जो बढ़ानी है, जो समाज को जानकारी देनी है, फिर जो कुछ हमने वेबिनार्स करिए किए, कुछ हमने फेसबुक इवेंट्स किए वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए लोगों को कि कैसे वो अपनी मानसिक स्वास्थ्य का देखभाल कर सकते हैं और अगर उनको किसी मदद की जरूरत है तो वो कैसे वो मदद ले सकते, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं के पास मदद लेने के लिए। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अपने आस पड़ोस में किसी से बात कर सकते हैं, अपने सोशल सर्कल में किसी से बात कर सकते हैं। फिर आप बहुत सारी हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं, जैसे महामारी के दौरान एक कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन हेड टू हेल्प शुरू करी थी, तो वो हेल्पलाइन और बाकी और सारी हेल्पलाइंस हैं उनमें आप फोन करके आप उनसे बात कर सकते हैं। फिर अगर आपको जरूरत है तो आप अपने लोकल डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, अपने जीपी के पास। हमारी इंडियन कम्युनिटी में बहुत सारे जो लोग हैं वो स्टूडेंट्स हैं
जी
और कई बार ना उन लोग को मेडिकेयर की एक्सेस नहीं होती या उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो थोड़ी थोड़ी परेशानियां कुछ हद तक थोड़ी अलग हो जाती है कि कैसे वो अवेयरनेस हो और कैसे उसके बारे में वो लोग मदद ले सकें। और दूसरा फिर क्या है कि थोड़ा सा
जी
जो मेंटल हेल्थ के लेके थोड़ा सा स्टिग्मा है कि भाई यार ये छुपाना है, बताना नहीं है किसी को, मदद नहीं लेनी चाहिए और या चुपके चुपके से थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं मदद लेने की, तो वो थोड़ा सा है हमारी कम्युनिटी में। और उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर लोग जल्दी मदद लें तो वो सही इलाज करा सकें, अगर वो
जी
देरी करेंगे मदद लेने में तो फिर उनके जो जो रिकवरी जो उनकी होनी है जिसमें जो उनका ठीक हो सकते हैं उसमें थोड़ा सा हम कुछ है, थोड़ा सा मतलब एविडेंस है कि भाई आप अगर आप ठीक टाइम पे इलाज नहीं कराएंगे तो फिर आपका आउटकम विल नॉट बी गुड। तो इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, तो वो हमने देखा कि थोड़ा बहुत जो अवेयरनेस है वो थोड़ी डिफरेंट है हमारी कम्युनिटी में। और कुछ कुछ चीजें ये भी हैं कि भाई आप कम्युनिटी में कई सारे अलग अलग तरह के लोग हैं और उन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं वो एक्सेस करने के लिए कि नहीं है। जैसे बहुत सारा था कि भाई हमने काफी जब वो एक हेड टू हेल्प जब हेल्पलाइन शुरू करी थी तो उसमें हमने बड़े स्पेसिफिकली बोला था ये कि स्टूडेंट्स हो या जो टेम्पररी वीजा पे लोग हैं या कोई भी है तो सबके लिए फ्री अवेलेबल।
जी
तो ये जानकारी बड़ी जरूरी थी उस वक्त में कि ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई अरे मैं तो स्टूडेंट वीजा पे हूँ या मैं टेम्पररी वीजा पे हूँ और मैं मेरे पास पैसे नहीं है और मैं मदद नहीं ले सकता हूँ। तो आई थिंक जरूरी है कि हर किसी के लिए मदद अवेलेबल है।
जी डॉक्टर विनय, सरकारी तौर पे सहायता तो उपलब्ध है, मगर समुदाय के लोग, भारतीय समुदाय के लोग खासकर, किस प्रकार एक दूसरे की मदद कर सकते हैं?
अच्छा अच्छा सवाल है, क्योंकि जो हम जिस कल्चर से आते हैं भारतीय कल्चर में कह लो या जो बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, हम थोड़ा सा जिसको हम एक तरह से हम कहते हैं कि कलेक्टिव कल्चर, कि हम
जी
काफी मिलजुल के रहते, कि हमारे में क्या है कि सिर्फ जो मैं ही इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरे परिवार में और जो मेरे बाकी जो हमारी सोसाइटी में लोग हैं वो सब इम्पोर्टेंट, हम सब उनको अहम भाव देते हैं। तो वो जो है वो कई बार यहाँ आने के बाद लोगों को लगता है कि अरे वो बात नहीं है यहाँ पे जो जो वो बात हिंदुस्तान में थी। और कई बार क्या होता है कि फिर लोग सोचते हैं कि अरे पता नहीं हम उनसे बात करें कि नहीं करें, जबकि हिंदुस्तान में तो आप जैसे जानते हो आप किसी के घर जाना है तो आप फोन करके नहीं बोलते कि भैया हम आए कि नहीं आए, आप पहुंच जाते हो। तो इस तरह की जो जो कम्युनिटी वाली भावना है वो लोगों में है यहाँ पे,
जी
और फिर उसका फायदा हमको उठाना चाहिए। और उसका फायदा उठाने का तरीका ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन कम्युनिटीज ने बनाई हुई हैं, और वो
जी
ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरह की सहायताएं मुहैया कराती हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनय जी, आज SBS हिंदी प्रोग्राम से बातचीत करने का।
धन्यवाद।